वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोता, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु सचमुच में आप दयालु और प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आज हम जीवित इसलिए हैं क्योंकि प्रभु आपका अनुग्रह हम पर है। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि प्रभु हम आपके जीवित वचन को समझकर अपने जीवन में ग्रहण कर सकें, उसके अनुसार चल सकें। तमाम प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, बीमारों से आप हमारी रक्षा करें। इस समय हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और भजन संहिता 39 निकाल लें। आज का विषय है अंतिम संस्कार का भजन। यह एक उत्तम भजन है जो हमें मनुष्य की क्षणभंगुरता, दुर्बलता और छोटेपन का बोध कराता है। इसमें मानवीय अस्तित्व की निस्सारता व्यक्त है। यह भजन अधिकतर अंतिम संस्कार के समय उपयोग में लाया जाता है और उचित भी है। कुछ विचारक तो इस भजनों को सबसे अधिक मनोरम उपमा कहते हैं। डीन पारोने ने कहा, पवित्र गायक ने अपनी भावनाओं को लंबे समय से दबा रखा है, यद्यपि उसके मन में व्यक्त विचार उभर रहे हैं, उसने उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया। वह सहानुभूति से रहित संसार की कठोर दृष्टि के सामने अपने मन को खोल नहीं पाया था। उसे डर था कि कहीं वह अपनी परेशानियों को व्यक्त करते समय ऐसी बात न कह दे कि दुष्टों को परमेश्वर की बुराई करने का अवसर मिल जाए, और अंत में अपनी भावनाओं को दबाने में वह सफल न हुआ तो उसने मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर से बातें करना आरंभ की। यदि परमेश्वर की ज्योति में देखने की अपेक्षा यह उसकी नाई है जो अनुभव करता है कि जीवन कैसा आशा रहित है, वह इसी क्षणभंगुरता, दुर्बलता और मानवीय छोटेपन का उल्लेख करता है। वह इस विषय में पूर्ण रूप से आश्वस्त है। स्पष्ट कहा जाए तो मानवीय जीवन निसंदेह परमेश्वर की सृष्टि में व्यापक विफलता है। परमेश्वर के साथ संबंध की अपेक्षा यह जीवन अर्थहीन ही है। मेरे मित्रों, सूर्य के नीचे सब व्यर्थ है, आप यही कहेंगे। परमेश्वर के पुत्र से रहित इसका कोई अर्थ नहीं है। आइए हम भजन संहिता 39 उसके एक पद को पढ़ें। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। इस भजन का जो विषय है उसके बारे में दाऊद सांसारिक मनुष्य से चर्चा करना उचित नहीं समझता है, क्योंकि जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। भजन संहिता 39 के दो पद में लिखा है, मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। परंतु दाऊद से कहे बिना रहा नहीं जा सकता था, अतः वह अंत में परमेश्वर से कहता है, भजन 39 उसके तीन पद में, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। वह परमेश्वर से कहता है। भजन संहिता 39 के चार पद में, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। दाऊद मनुष्य की क्षणभंगुरता को पहचानते हुए पूछता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, अस्तित्व को अर्थ प्रदान कैसे होता है। आज के युवाओं का यही प्रश्न है और वे हाथ मारकर पूछते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मनुष्य शांति चाहता था, मनुष्य एक अच्छा घर, कार और अच्छा भोजन चाहता था, मनुष्य समृद्ध समाज चाहता था और उत्तरदायित्व के प्रति आंखें बंद करना चाहता था, परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। हमारे जीवन तनावग्रस्त हो गए। युवा वर्ग, यहां तक कि विश्वासी भी चारों ओर देखकर पूछते हैं, क्या यही जीवन है, जीवन का अर्थ क्या है। दाऊद का भी यही प्रश्न था। विश्वासियों की जीवन शैली ऐसी हो सकती है कि जीवन का अर्थ ही उसमें न हो। यदि आप विश्वासी माता पिता हैं, तो क्या आपका जीवन आपके बच्चों को मसीह की ओर आकर्षित करता है, या आप उन्हें मसीही बातों से विमुख कर रहे हैं। आज पृथ्वी पर अनेक आवारा जन हैं, जो अपना घर परिवार त्याग परेशानियों में उलझे हुए हैं, क्योंकि उनके सामने अच्छा उदाहरण नहीं रखा गया था। उनमें से अनेक जन अच्छे परिवारों में से हैं, कम से कम देखने में तो अच्छे परिवार से हैं, परंतु इन युवाओं ने उनके जीवन को देखकर कहा, उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आज परिवार टूट रहे हैं, बच्चे सड़कों पर आ रहे हैं, इसका कारण क्या है। ओह, यह भजन आज की पीढ़ी के लिए अति उपयुक्त है। दाऊद ने प्रार्थना की, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, मुझे जीवन का अर्थ और उद्देश्य प्रदान कर। भजन संहिता 39 के 5 पद में लिखा है, देख तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। यह पद सेला से अंत होता है, अर्थात ठहरो, देखो, सुनो, इस पर विचार करो। मेरे मित्रों, इस पृथ्वी पर जीवन की क्षणिक अवस्था हमें अवश्य कुछ सिखाए। यदि मानवीय अस्तित्व केवल पार्थिव जीवन है, तो जीवन व्यापक विफलता है। इसमें अधिक उत्तम तो यह होगा कि मैं डायनासोर या चीड़ का पेड़ होता, क्योंकि उनकी तुलना में मानवीय जीवन क्षणिक ही है। ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं, परंतु मनुष्य जल्दी खत्म हो जाता है। भजन संहिता 39 के 6 पद में लिखा है, सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच में वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। अंग्रेजी के उपन्यासकार विलियम थाकरे की पुस्तक वेनिटी फेयर निसार मेला उस समूह पर लिखी एक उत्तम पुस्तक है, जो पद प्रतिष्ठा के लिए जी रहे हैं और स्वर्ग में दुर्गंध उत्पन्न करने वाले पापों में लिप्त हैं। वे जन्मे और मर गए, यही जीवन है। निश्चय ही प्रत्येक मनुष्य व्यर्थ के दिखावे में जी रहा है। जो नहीं है वह वही दिखाना चाहता है। वह धन संग्रह करता है, परंतु जानता नहीं कि उसका भाग्य या मालिक कौन होगा। आज तक कुछ नहीं बदला है। उन विश्वासियों के बारे में सोचे जो यहां संपदा एकत्र करके अभक्त संतान के लिए छोड़ जाते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, परंतु उसका उड़ाव पुत्र सबको बर्बाद कर देता है, या अयोग्य कथित मसीही सेवा को दे जाते हैं। आज ऐसा बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। भजनकार ने यह देखकर पूछा, इन सब का उद्देश्य क्या है। भजन संहिता 39 के 7 पद में हम पढ़ते हैं, अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूं, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा रखकर कहा, हे प्रभु, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, तो आपको जीवन का अर्थ नहीं प्राप्त होगा। भजनकार भजन संहिता 39 के 8 पद में कहता है, मुझे मेरे सब अधर्मों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा न करने पाए। दाऊद एक अच्छा उदाहरण बनना चाहता था। भजन संहिता 39 के 9 पद में लिखा है, मैं गूंगा बन गया और मुंह न खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। वह मनुष्यों को अपने विचार सुनाना नहीं चाहता था, क्योंकि उनमें निराशा थी। भजन संहिता 39 के 10 पद में लिखा है, तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है, उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूं। वह अपने जीवन को परमेश्वर के अनुशासनाधीन देख रहा था, परंतु उसमें एक उद्देश्य था। मेरे प्रियो, हमें जीवन के उचित दृष्टिकोण की कैसी महान आवश्यकता है। कब्र इसका अंत नहीं है, तू मिट्टी है और मिट्टी में लौट जाएगा, यह आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। आत्मा अमरण है, मनुष्य एक लंबी यात्रा पर है, सामने अनंत जीवन है। अतः आशा कैसी महिमा योग्य या महिमामय होना है। मित्रों, आप ये न सोचे कि मैं जैसा हूं वैसा जी लूंगा और मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आप इस बात को जान ले कि आत्मा अमरण है और आपको न्याय का सामना करना पड़ेगा, जहां पर आपको नरक या स्वर्ग मिलेगा। भजन संहिता 39:12 पद में लिखा है, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा, मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। जी हाँ, हम यहाँ तीर्थ यात्री और परदेशी हैं, परंतु हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम भूमि का एक टुकड़ा लेकर सोचते हैं कि वह शाश्वत भाग है। हम झूठी सुरक्षा खोजते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि हम इस पृथ्वी पर तीर्थ यात्री और परदेशी हैं, और हमें इसी बोध से जीना भी है। हम यात्रा पर हैं और एक नगर की खोज में है जिसका निर्माता परमेश्वर है। इब्रानियों के पत्र 11:10 पद में हम पढ़ते हैं, ओह, आज आशा पाने के निमित्त भजनकार कहता है, मेरे आशा तुम में है। भजन संहिता 39:13 पद में लिखा हुआ है, आह, इससे पहले कि मैं यहां से चला जाऊं और न रह जाऊं, मुझे बचा ले जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। अर्थात मुझे इस योग्य बना कि मेरा जीवन स्त्री और पुरुष को अनंत जीवन पर ध्यान देने के लिए विवश करे। ऐसा जीवन जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाने की अपेक्षा उसके निकट लाए। आज हम व्यक्तिगत गवाही के बारे में बहुत सुनते हैं। हमारे जीवन की गवाही क्या है? क्या मनुष्य हमारे जीवन से परमेश्वर के निकट आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जीवन एक या दूसरे काम को अवश्य कर रहे हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 39 समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ते हैं और भजन संहिता 40 में पाते हैं, जिसका विषय है प्रभु यीशु के क्रूसीकरण को प्रकट करना, मसीह संबंधित भजन। भजन संहिता 40 और 41 भजनों का उत्पत्ति वर्ग अंत करता है। उन्हें मसीही संबंधित भजन भी कहा जाता है, क्योंकि उनका संदर्भ नए नियम में दिया गया है और इसी कारण उनका विशेष महत्व भी है। तो आइए आप भजन संहिता 40 उसके एक पद को निकालिए। लिखा है, मैं धीरे से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। भजन संहिता 39 का अनुवर्ती यह भजन यथोचित है। ये सब भजन एक साथ चलते हैं, अर्थात इनमें आप एक क्रमवार प्रगति को देख पाते हैं। कुछ का मानना है कि यह भजन दाऊद के वे अनुभव हैं जो उसे अबशालोम से भागते समय हुए थे। यह किसी सीमा तक सही भी है, परंतु यह भजन इब्रानियों की पुस्तक में अद्भुत रीति से व्यक्त किया गया है। इस भजन में पुनरुत्थान, जय और स्वर्गरोहण की स्तुति करने वाला प्रभु यीशु स्वयं ही है। यह वास्तव में मसीह संबंधित भजन है। इसमें प्रकट किया गया है कि प्रभु यीशु की मृत्यु उसकी पराजय नहीं थी, वह एक महान विजय थी। भजनकार कहता है कि मैं धीरे से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। जी हाँ, यह क्रूस पर से मसीह यीशु की पुकार के विषय में कहा गया है। भजन संहिता 40 उसके दो पद में लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गढ़े और दद्दल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। प्रभु यीशु के कष्ट और मृत्यु की तुलना सत्यानाश के गढ़े से की गई है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्रूस पर यीशु की मृत्यु कैसी भयानक थी। भजन संहिता 40:3 में हम पढ़ते हैं, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। इस पद में व्यक्त नए गीत के विषय हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यह मुक्ति का गीत है। बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। वे क्या देखकर के डरेंगे? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान। भजन संहिता 40 के 4 पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श मनुष्य है जो परमेश्वर में भरोसा रखता है और अभिमानी का पक्ष नहीं लेता तथा झूठ का साथ भी नहीं देता है। भजन संहिता 40 के 5 पद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए भेजा तो प्रकट किया कि वह हमारे बारे में क्या सोचता है। हम अपनी पृथ्वी से अलग अन्य ग्रहों पर भी जीवन की संभावना की कल्पना करते हैं। मैं इस विषय का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, परंतु हो सकता है कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन हो, परंतु मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अन्य किसी भी ग्रह पर क्रूस नहीं होगा। केवल यही परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर मरा था। यह कैसी अद्भुत बात है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। ओह, क्रूस हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम का कैसा प्रदर्शन है। अब ये पद इब्रानियों की पुस्तक में भी संदर्भित हैं। भजन संहिता 40 उसके 6 से 9 पद में लिखा है, मेल बलि और अनबलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है, देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मेरे मित्रों, यह एक अद्भुत भजन है। पिछले भजन के क्रम में है, जहां मनुष्य की क्षणभंगुरता व्यक्त की गई है। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं। इसका संदर्भ हम इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 5 पद में देखते हैं। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। क्या यह संदर्भ अनुचित है? बाइबल के आलोचक कहते हैं, ओह, यहाँ बाइबल में चूक और विषमता है। भजन संहिता 40 के 6 पद में लिखा है, मेरे कान तूने खोद कर खोले हैं, परंतु इब्रानियों की पुस्तक में वह कहता है, मेरे लिए एक देह तैयार की। बाइबल का लेखक पवित्र आत्मा है। नया नियम हो या पुराना नियम, दोनों ही उसी ने लिखा है। भजन हो या इब्रानियों की पुस्तक, दोनों का लेखक वही है, और यह उसका अधिकार है कि वह शब्दों में परिवर्तन लाए और उसके द्वारा परिवर्तन लाने में कोई उचित कारण होता है। आइए हम इसकी पृष्ठभूमि पर ध्यान दें। निर्गमन की पुस्तक 21 अध्याय में स्वामी और दास के संबंध में एक नियम दिया गया था। दासत्व के एक निश्चित समय के पश्चात दास को मुक्त करना अनिवार्य था। इस बीच यदि वह दास किसी दासी से विवाह करके संतान उत्पन्न कर ले तो मुक्ति के समय वह अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि वे दासत्व के काल में थे। अब यह दास क्या करेगा? वह यह निर्णय लेगा कि अपनी पत्नी और अपने स्वामी के प्रेम के कारण वह मुक्त नहीं होना चाहता है। निर्गमन की पुस्तक 21 अध्याय के 6 पद में हम पढ़ते हैं, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह दास सदा उसकी सेवा करता रहे। मेरे मित्रों, भजनकार इसी नियम के संदर्भ में कहता है, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। यीशु जब जगत में आया था तब क्या उसके कान सुतारी से छेदे गए थे? नहीं, उसे संपूर्ण देह दी गई थी। उसने देह धारण करके मनुष्यों में अपनी पहचान बनाई और दास का रूप ग्रहण किया। वह बलि का पात्र बना था। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर पुराने नियम के बलिदानों से प्रसन्न नहीं था। वे तो केवल प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की ओर संकेत करते थे जो उसका प्रतिरूप था। देखिए यशाया की पुस्तक इस विषय में क्या कहता है। यशाया की पुस्तक 50 अध्याय के 5 पद में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। यह पद आने वाले दास यीशु की दीनता का प्रदर्शन करता है। यीशु इस पृथ्वी पर आया और क्रूस पर चढ़ाया गया, परंतु उसका कान छेदा नहीं गया था। उसे मानवीय देह दी गई थी और उसके हाथ एवं पांव छेदे गए थे। मेरे मित्रों, वह महिमामय देह लेकर स्वर्ग में गया है, जिसमें कीलों के छेद और बर्छे के चिन्ह अनंत काल तक बने रहेंगे, जिससे कि आप और मैं उसके समक्ष निर्दोष और निष्कलंक ठहरें। उसने सुतारी से कान छिदाने से कहीं अधिक किया है। उसने अपनी देह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है और हमारे बिना स्वर्ग में नहीं लौटना चाहता था। मेरे मित्रों, यह एक अनुपम मसीह संबंधित भजन है जो मसीह के क्रूसीकरण को व्यक्त करता है, क्योंकि वह हमसे अर्थात मुझसे और आपसे प्रेम करता है। यहाँ पर अध्याय 40 समाप्त होता है और अब हम भजन 41 में आगे बढ़ते हैं, जिसका विषय है यहूदा के विश्वासघात की भविष्यवाणी का मसीह संबंधित भजन। यह भजन दाऊद द्वारा संभवतः उस समय लिखा गया था जब उसके विश्वास योग्य परामर्शदाता अहितोपेल ने उससे विश्वासघात किया था। अहितोपेल ने अबशालोम के विद्रोह में उसका साथ दिया था और अंत में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की। दूसरा शामिल की पुस्तक 17 अध्याय उसके 23 पद में हम देखते हैं, अहितोपेल मसीह के विश्वासघाती यहूदा इस्करियोती का प्रतीक है। प्रभु यीशु ने भी इसका संदर्भ दिया था। मेरे प्रियो, इस भजन का आरंभ आशीष वचन से है। इसका आरंभ धन्य से होता है और अंत भी धन्य से होता है। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। और अंत में वह कहता है, इसराइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। हम देख चुके हैं कि धन्य का अर्थ है आनंदित। इस प्रकार भजनों का उत्पत्ति वर्ग आनंद से आरंभ होकर आनंद से समाप्त होता है। अब उस भाग पर ध्यान दें जो इसे मसीही संबंधित भजन बनाता है। आप मेरे साथ भजन संहिता 41 उसके 9 पद को निकालें। लिखा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यीशु ने यहूदा के संबंध में इस पद का संदर्भ दिया था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 18 पद में, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। प्रभु यीशु के विश्वासघाती यहूदा ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 16 पद में पत्रस भी इसका संदर्भ देते हुए कहता है, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का यह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। यहां और भी कुछ लिखा है भजन संहिता 41 के 10 में, परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। यह पद प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी है, मुझको उठा कि मैं उनको बतला दूं। भजनों के इस उत्पत्ति वर्ग में हमने मसीह की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान देखा है, परंतु मैं अति स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु की मृत्यु किसी को नहीं बचाती है। यह उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान है जो मनुष्य का उद्धार करता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 15 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पौलुस सुसमाचार की विशेष परिभाषा देता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बिना सुसमाचार है ही नहीं। जी हाँ, यीशु के विषय सबकी अपनी अपनी राय है। देखिए मत्ती रचि सुसमाचार 16 अध्याय उसके 13 से 16 पद में यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलियाह और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आप क्या कहते हैं कि मसीह कौन है? अधिकांश नाटक मसीह को क्रूस पर या कब्र में ही छोड़ देते हैं, वहां सुसमाचार नहीं है। पत्थर लुढ़काया गया और प्रभु यीशु कब्र से बाहर आया था, वह मृतकों में से जी उठा है। पुनरुत्थान के कारण हम कह सकते हैं कि वह जीवित है। क्या आज प्रभु आपके लिए जीवित है? भजन संहिता 41 के 13 पद में लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है, आमीन फिर आमीन। इस पद के अंत में दो बार आमीन शब्द आया है। इसका अर्थ है कि जब प्रभु यीशु फिर जी उठा, स्वर्ग में गया और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर विराजमान है, तो परमेश्वर ने हमारे उद्धार को पूरा किया है। प्रभु यीशु ने हमारा उद्धार कार्य संपन्न किया है। अब आपको उसमें कुछ भी जो आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सुसमाचार से पुनरुत्थान को ना हटाएं, अन्यथा सुसमाचार समाप्त हो जाएगा। पुनरुत्थान बिना सुसमाचार नहीं है। मेरे मित्रों, उत्पत्ति वर्ग का यह अंतिम भजन है। उचित ही कहा गया है कि उत्पत्ति की पुस्तक संपूर्ण बाइबल का लघु रूप है, अर्थात धर्मशास्त्र के सब सत्यों का मूल वहां है। इसी प्रकार भजनों का यह प्रथम भाग संपूर्ण भजन संग्रह है। उत्पत्ति की पुस्तक मिस्र में कफन के साथ अंत होती है, तो भजनों का यह भाग पुनरुत्थान के ऊंचे स्वर से अंत होता है। मेरे मित्रों, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, वह जीवित है और वह चाहता है कि आज आप भी उस उद्धार के आनंद को प्राप्त करें। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आए, आपको शांति और आनंद दे? यदि हाँ, तो आइए आप अपने हृदय को खोलिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। मित्रों, आज यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चय जाने कि वह आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए अवश्य आएगा। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप अवश्य ही आज के अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे एवं आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। नमस्कार।
तू ही दाता विश्व।